बतला रहे हैं निराकार शब्द है, निर्गुण शब्द है, निर्गुण निराकार और
निर्विशेष
निशक्ति निरुपाधि इत्यादि जो शब्द हैं, इसमें पूर्ण प्रधान मौलिक शब्द है गुण रूप और रूप से अरूप बना है, अरूप से अरूप नहीं बना, रूप में अ लगाओ तो फिर से ये हो गया, ये बीमारी है, किसी को नाक से पानी आ रहा है, शरीर गर्म है, छींकें हो रही है, क्या समझो
जुखाम,
ये जुखाम के ये लक्षण है, तो रूप है, किसी कारण से उसमें अरूप लगाया तो पीछे से अरूप बना, ये बीमारी है, किसके लिए, जो नहीं देखते हैं उस रूप को उनके लिए अरूप कहा गया, क्यों नहीं देख सकते, चिन्मय वस्तु है हमारी आंख है उसको नहीं देख सकते, अभी चीज को समझने के लिए ऐसे समझिए पानी है, पानी को किसी से पूछे कि इसका रूप क्या है, साइंटिस्ट क्या कहेगा,
जिसमें डालो है
वो कहेगा, जब देखेगा जैसे जिस चीज में रखते हो वैसा ही बन जाता है, दिखाई तो पड़ता है ना, तो जिसका रुचि नहीं तो वह कैसे दिखाई पड़ेगा, इसका कॉलर क्या है, जैसा ही रंग डाल दो वैसा ही, इसलिए साइंटिस्टों ने उसको कहा कॉलर प्लेस, जिस रूप में उसको रखो वैसा ही हो जाएगा, इसलिए सेफ प्लेस है, तो सेफ कि नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं, कोई स्वाद नहीं है, पानी में जरूर अपना स्वाद है, तो अभी कोई चीज मिला दिया जाता है तो ऐसा मालूम होता है जैसे ये नमकीन पानी है, ये मीठा पानी है, ये ऐसा पानी है, ऐसा, किंतु अपना स्वाद कोई रूप है, गुण है, टेस्ट है, बट यू कैनट डिफाइन, लाखों से धारण कर सकता है, यू कैनट डिफाइन दैट व्हाट इज द शेप ऑफ वाटर, व्हाट इज द कलर ऑफ
वाटर, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ वाटर,
इसलिए उसको निराकार इत्यादि कहते हैं, देख रहे हो, जब एक पानी के भी तुम रूप गुण इत्यादि को नहीं देख सकते तो पानी को भी बनाने वाला उससे में ये सुख है उसके रूप को तुम क्या डिफाइन कर सकते हो, इसलिए उसको निराकार कर, क्यों अतिंता खलु भावा न तांतार के इन जो जये, जो प्रकृति से अतीत है अवांग मन से गोचर है, तुम अपनी बुद्धि से कैसे उसको नाप सकते हो, उस पर कैसे विचार कर, इसलिए शास्त्रकारों ने इसलिए कहा कि प्राकृतिक बुद्धि से नहीं पकड़ में आएगा, इसलिए वो निराकार है, वो निर्गुण है, भगवान में यदि गुण नहीं है तो ऐसे भगवान से हमें जरूरत क्या है, जो कि जिसमें दया भी नहीं है, जिसमें प्रीति नहीं है, उस भगवान को मान करके क्या होगा, तो उसे तो पत्थर अच्छा है, पत्थर जैसा निष्ठुर है वैसे निष्ठुर है, आकाश जैसे निराकार हो गए तो आकाश को कोई पूजा करता है, इसलिए मुसलमान लोग भी, हिंदू लोग भी, क्रिश्चियन लोग भी, या दूसरे बौद्ध लोग भी, यदि मूर्ति नहीं मानते हैं तो मस्जिद किस लिए खड़ा करते हैं, जब वो क्या के खराब उसमें किस लिए, और ये बाइबल वाले क्या करते हैं, चर्च है ना, चर्च की जरूरत क्या है, खुले आकाश में निराकार का ध्यान भी तो नहीं होगा, उस तरह की कोई वस्तु नहीं, इसलिए ये सब पूरी कल्पनाएं हैं, उनको किसी न किसी रूप से उनको मानना पड़ता है, किसी न किसी रूप से, तो आज यहीं पर समाप्त करूं, अब जब कब जब फिर आएंगे से उपनिषद की व्याख्या करके और भी उदाहरण और भी सब युक्तियां सुंदर सुंदर जिसे आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि भगवान का रूप है, जीवात्मा का रूप है, ये जो रूप है ये रूप नहीं है, अभी जो देख रहे हैं इसकी कोई स्थिति नहीं है, नित्यता नहीं है, ये तो मृत्यु है, इसलिए हम दूसरे दिन इसको बताए शास्त्रों से प्रमाण लेकर के विचार करते
आज कोई मुहूर्त नहीं रहे, मयूर नाच नहीं रहे, गायत्री नहीं है, जो जो स्थिति में है उसी में कृष्ण के लिए तड़प है, सभी योगियां कृष्ण के घर में बड़ी उन्होंने सोचा कि गोकुल में है, गोकुल माने वृंदावन को भी गोकुल का, हम लोग गोकुल जाना चाहते, किंतु गोकुल मथुरा से कितनी दूर है, यमुना के इस पार में मथुरा और उस पार में बस नदी का अंतर है, नदी में भी आधा आधा रख लिया जाए, आधा मथुरा की तरफ में और आधे, तो कितना अंतर रह जाएगा, दो अंगुल का अंतर रह जाएगा, दो अंगुल में कितना अंतर है, दो अंगुलों में कितना अंतर है, दस केवल रेखा है, किंतु मथुरा से गोकुल कितनी दूर है, कृष्ण मथुरा चले गए हैं ना, गोकुल बहुत दूर है, अकेले आए तो रास्ता भूल जाए, और यदि किसी को साथ नहीं तो लज्जालत भी है, और डगर बहुत तेरी में कृष्ण से मिलना सहज नहीं है, इस जगत से निकल करके उस जगत में कृष्ण से मिलना इतना कठिन है, इसलिए कोटि कोटि में से कोई एक निकल करके गोकुल नगर में जाकर के इसे भेंट करता है। आज सब गोपियां तड़प रही हैं कृष्ण से मिलने के लिए, आज गोकुल से जा रही हैं, कहां जाने चाहिए, इसलिए जरा सुनिए, गोकुल निकट से निकट भी है, हृदय में ही गोकुल नगरी है, वहीं पर कृष्ण भी हैं, जीवात्मा में भगवात्मा और भगवान में दूर दूरी नहीं है, किंतु कोटि जन्मों से हम लोग उनको नहीं पा रहे, कैसे मिलते हैं, इसीलिए ये भागवत, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पृथ्वी का भार उतर गया, जोड़ा गया था, द्वारकापुरी में कृष्ण लौटे, उनको अपने लीला भी समाप्त करनी थी, इसलिए छल बहाने से युद्ध का भाव दिखला करके बहाना, युद्ध कुछ नहीं हुआ और ऐसा बना बनाया कि लोगों ने देखा जितने जजबंती से परस्पर लड़ करके खत्म हो, किंतु हुआ कुछ नहीं, मैच मरी थी, इसके बाद में कृष्ण अपने धाम को समस्त परिकरों के साथ में उन्होंने पृथ्वी लोक में उनको उद्धव जी को रख दिया, हमारे बाद में तुम रहना, लोगों के लिए तुम एक पुल बनना, जैसे कि इस भाव सागर से पार करके उतरने चले, और एक सुखदेव गोस्वामी जी को रखा सुख पक्षी के रूप, और कहा कि मैं ही अप्रकट के बाद में श्रीमद् भागवत रूपी ग्रंथ के रूप में अवतीर्ण होऊंगा, इसलिए कृष्ण ही स्वयं श्रीमद् भागवत कथा के रूप में सुखदेव जी के मुख से इस जगती तक पर प्रकट किया, परीक्षित महाराज की सभा में ये प्रकट सुखदेव जी प्रकट कर, सात दिन की कथा वहां चली, उसी में जीव कैसे भगवान को पा सकता है, सरल सहज रूप में बोधगम्य रूप में इस चीज को हमें दिख जाए, लब्ध्वा सुदुर्लभमेतं बहु संभवान् ते मानुष्यम अर्थतम अनित्यम अपि हरिर तूर्णमजते तना पतेत अनुमित्तुजावत निशेषाय विषा खलु सर्वतः। परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज जी को एक खड़ा किया है बीच में श्रोता के रूप में, किंतु और सब श्रोता जी के लिए कर रहे हैं, सुख परीक्षित जी के लिए नहीं, वो तो मुक्त थे। मैंने कहा देखो ये मनुष्य जन्म बड़ा ही दुर्लभ है, कोटि कोटि जन्मों के बाद में यह सुलभ हुआ है, किंतु क्षण मंगूर है, अभी है, अभी घर पहुंचते पहुंचते कितने आदमी पहुंचे ना पहुंचे कोई चीज नहीं,
इसलिए मनुष्य जन्म जब तक है इसी बीच में अपना जीवन सफल कर, कैसे सफल करें? उसी भागवत में आप लोगों ने सुना होगा, बताया गया कृष्ण ही स्वयं भगवान है। एक जन कला पुंसा कृष्ण तू भगवान है। और किसी शास्त्र में गीता और भागवत को छोड़कर किसी भी पुराण में उपनिषद में वेदों में ये अच्छी तरह से नहीं बतलाया कि हम लोगों का आराध्य कौन है, किसकी आराधना करनी चाहिए, सबसे अच्छा फल किसमें मिला, नहीं बतलाया। केवल भागवत में ही उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को बताया जितने सब देवता हैं इनका भजन करने से भी देवता है क्षणभंगुर फल देंगे और वो संसार में बंधन का कारण होगा। शंकर जी ने रावण को, भस्मासुर को, कंस को बर दिया, धन धान्य लक्ष्मी इत्यादि से परिपूर्ण हो आया काम में। रावण को काम में आया, वंश के समेत ध्वंस हो गया। इसी तरह से देवता और देवियों के दिव्य जीव हमारी रक्षा और शांति नहीं दे कर सकते और न शांति दे सकते। केवल मात्र कृष्ण का एक नाम लेने से, एक बार भी कोई नाम ले उनकी कथाओं का श्रवण करे या कहे, झट माया से पार, दूसरों से नहीं होता। इसलिए श्रीमद् भागवत में पहले उन्होंने बहुत से राजाओं का जीवन चरित्र वर्णन किया, जैसे पुरंजन उपाख्यान का, भरत महाराज जी का, कपिल देव ऋषि का संवाद और भी बहुत, पृथु नहुष और सब बड़े बड़े राजाओं का चरित्र वर्णन। इसमें यह दिखाने के लिए भाई ये बड़े बड़े राजा लोग आज कहां हैं, उनको सुख शांति नहीं मिली, उनको ये नस्पत चीजों को छोड़ करके जाना पड़ा, इसलिए इस संसार के सुखों में जो भोग में मस्त हो जाते हैं उनको सुख और शांति कदापि नहीं मिलेगी। इसलिए सुख शांति चाहते हो तो कृष्ण की कथाओं को सुनो, उनका नाम कीर्तन करो, उनके चरणों में भक्ति करो। विशेष करके यह बात प्रहलाद महाराज जी के उपाख्यान में बतलाया, समस्त शास्त्रों का सार यही बतलाया, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनम वंदनम दर्शन सख्यात्म निवेदनम। मनुष्य जन भगवान की कथाओं को पहले गुरु मुख से श्रवण कर ले, इसलिए गुरुकरण जरूरी है। गुरु भी कैसा होना चाहिए भागवत में बतलाया, शुक्राचार्य जैसा गुरु नहीं तो बलि महाराज को डुबा देंगे, इसलिए उन्होंने बलि महाराज ने उस गुरु को, गुरु कैसा होना चाहिए यह बतलाया, नारद जी जैसा, व्यास जी जैसा, सुखदेव गोस्वामी जैसा गुरु होना चाहिए, कभी हमी अंतरिक्ष प्रभु सभ्य पलायन जैसा गुरु होना चाहिए, कपिल देव जी जैसा गुरु होना चाहिए। संसार में किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं है, उनसे विरक्त हैं और कृष्ण के चरणों में परम प्रेम है, उनकी कथाओं को सुनने में, उनका नाम कीर्तन करने में बड़ा उनको उत्साह है, ऐसे लोगों को गुरु किया जाए। संसार से आसक्ति छोड़ करके भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम रहने वाले एकांतिक गुरु को करने से ही कृष्ण के चरणों में भक्ति मिलती है, अन्यथा नहीं मिलेगी। इस तरह से नौम स्कंद तक की कथाओं को उन्होंने सुनाया। विशेष करके पुरंजन उपाख्यान में संसार क्या है, स्त्री पुरुष क्या है, संसार का परस्पर प्रीति क्या चीज है, इसको अच्छी तरह से समझाया। ये भीष है और कुछ नहीं, जिसने जन्म लिया उसको मरण भी है, अवश्यंभावी मरण होगा। ये सब कथाओं को किस लिए सुनाया, क्षेत्र प्रस्तुत करने के लिए, किसी का क्षेत्र कृष्ण प्रेम हृदय में जागृत, भक्ति को जागृत कर। जब तक ये सब संसार की आकांक्षाएं रहेंगी, कृष्ण की कथा वहां पर नहीं होगी, कृष्ण के कथा सुनने में मन नहीं लगेगा,
शुद्ध गुरु करने की इच्छा नहीं होगी, इसी में हम लोग रहे हैं। इस तरह से ये कथाओं को सुना करके क्षेत्र को प्रस्तुत किया। अब कृष्ण का लीला चरित्र के लिए अब दशम स्कंद में हम लोग पहुंचे। दशम स्कंद में जब तक पवित्रता हमारे हृदय में नहीं है तब तक कृष्ण वहां पर नहीं होंगे, इसलिए पूतना का चरित्र आया। कृष्ण प्रकट हुए कंस के कारागार में, इसलिए जब आदमी दुखी होता है वो अब इतना दुखी हो जाता है कि अब संसार कम है, कहीं भी उसकी लालसा नहीं रह जाती, हमारा बचाने वाला रक्षा वाला करने वाला कोई नहीं है, ऐसी स्थिति देवकी और वसुदेव की हुई। तब उन्होंने प्राण से मुख पुकारा प्रभु को, सुखी स्थिति में नहीं, इसलिए भगवान जानबूझ करके दुख देते हैं। इसलिए जेल खाने में जिनकी छाती पर रख करके दाल दली जा रही है, दाल दलना मैंने क्या, उनको रोज अपमानित करता था, गाली देता था, ऐसी स्थिति में देखा जाए और प्रभु के अतिरिक्त और कोई नहीं, उनको पुकारा प्रभु वहां पर। यहां पर एक बात देखी जा रही, जागतिक सत्य का कोई भी मूल्य नहीं है, परमार्थिक सत्य का ही मूल्य है। वसुदेव जी को कृष्ण ने प्रकट होकर के कहा था कि हमको गोकुल में दिया है, और कंस से कहा था कि हमारी लड़की भी वहां उनकी लड़की दे आए, ये जागतिक सत्य है। उन्होंने कहा ठीक, कंस से उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि आत्मा पुत्र क्या मैं समस्त पुत्रों को जन्मते ही तुमको दे आऊंगा जितनी भी क्षमता थी, किंतु कृष्ण जन्म होने के बाद में उनको गोकुल के दे आए और वहां से लड़की उठा ले आए, और वो कंस से वो कहा कि हमको लड़की भाई, लड़की भी थी ना लड़का, तो ऐसा महात्मा पुरुष और झूठ बोला, इस पर भी विचार करना है। कृष्ण जो कुछ कहते हैं वही परम सत्य है और बाकी सब झूठ है, कृष्ण के सेवा के लिए जो कुछ किया जाता वही परम सत्य है और बाकी सब कुछ असत्य है। इधर में कृष्ण वहां पर भी आधी रात में प्रकट हुए थे यशोदा जी के गर्भ से, एक ही साथ में यहां और वहां। जब ये लेकर के गए कृष्ण में कृष्ण मिल गए और रह गए लड़की, लड़के को उठा लिया, कृष्ण को वहीं पर रख दिया। यह तथ्य किसी को नहीं मालूम होगा। कृष्ण का पहला काम क्या है, पहला काम उनकी लीला में ये देखा जाता है, पूतना उनको मारने के लिए। पूतना मैंने क्या, पूतना जो पवित्र नहीं है। आजकल घर घर में मांस मछली लोग खा रहे, विशेष करके पाश्चात्य देशों से यही सब लेकर के घर में होता है, प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट तंबाकू अफीम गांजा अफीम धूम्रपान और सब मदिरा, ये क्या चीज है, ये पूत नहीं है, पवित्र नहीं है, इसलिए इनका जो सेवन करेगा वो कभी भी भगवान के निकट नहीं जा सकता है, भगवान की कथाओं में रुचि नहीं हो सकती, उसका कल्याण नहीं होगा। अरे मछली खाना क्या चीज है, हिंसा है ना, हिंसा से भगवान मिलेंगे, इसलिए इन चीजों को दूर करना चाहिए। तब प्याज तो फल है, उसमें क्या है, अरे धतूरा भी तो फल है, तो धतूरा खा लो ना, प्याज क्यों खाएगा, फल तो और बहुत से चीजें हैं, तो सभी फल खाए जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं। हमारे विषयों में देखा जिसमें सात्विक पक्ष में है भगवान का भजन करने के उपयोगी है, जैसा चीज खाओगे वैसा ही मन होगा, इसलिए भगवान अपने भक्तों के हृदय में जो अपवित्रता होती है उसको दूर कर देते हैं, इसलिए पूतना का वध। इसलिए साधक जब भगवान का भजन करने के लिए चलता है तो उसको शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध होने के लिए जो अपवित्रता है उसको पूतना जो पूत नहीं है तपस्व नहीं है उसको सबसे पहले दूर करना। इसके बाद उन्होंने करवट फदे जो गोवर्धन पर्वत धारण कर सकते हैं जो अपने श्वास से विश्व ब्रह्मांड को धारण करते हैं वो करवट भी बदल सकते हैं, ऐसी लीला करते हैं। उसी दिन में एक सप्तासुर नाम का कंस का अनुचार आया, देखा ये रूप धारण करने से पुतना तो रूप धारण करके दैत्य को मार दिया, आज हम रूप ही नहीं धारण करेंगे, गाड़ी में प्रवेश करके कृष्ण को दबा करके मार डालेंगे। इसलिए गाड़ी में आविष्ट हो गया, गाड़ी में आविष्ट हो गया, बैठे आप गाड़ी में आविष्ट हो गया और इतना भार उसमें हुआ, इतना भार कृष्ण गाड़ी के नीचे एक पल्ले में झूल रहे थे, उसने शरीर धारण नहीं किया किंतु गाड़ी के ऊपर से ऐसा फाड़ दिया कि उसके चक्के मिट्टी में घुसने लग गए और गाड़ी से कृष्ण दब जाए। कृष्ण खेल ही खेल में खेल रहे थे, अपने पैरों को इस प्रकार से कर रहे, कभी पैर के अंगूठे को मुख में दे रहे थे और ऐसे ऐसे उछाल रहे, खेल ही खेल में कृष्ण को पता नहीं और कोई झटका लगा और वो उलट करके गिर गया और वो मर। ये क्या चीज है? जागतिक बुद्धि, समस्त शास्त्र पढ़े हैं किंतु कृष्ण की शुद्ध भक्ति नहीं करते, वेद शास्त्र उपनिषद सब उनको ज्ञान है, कंठस्थ है, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद उनको सब है, उपनिषद सब आता है, किंतु कृष्ण के चरणों में एकांतिक भक्ति और विश्वास नहीं है। यह है सप्तासुर का काम। क्या हम सत्ता की सखत माने कहते हैं बैलगाड़ी या किसी भी वाहन? आजकल शहर में हम समझते हैं कि दिल्ली में ही सैकड़ों या हजारों गाड़ियां होंगी, ट्रक होंगे, जिससे शहर के गंदी चीजों को एकत्र करके उसको बाहर में फेंका जाता है। तो जितनी भी गंदी चीजें हैं वो गाड़ी में रख करके और फेंका जाता है, ऐसी चीजों को तुमने अपने ऊपर में रख दिया, कृष्ण का भजन नहीं करते हैं, इनको कहते हैं सप्तासुर। सब विद्याएं हैं, जानते हैं कृष्ण का भजन करना चाहिए सुखदेव गोस्वामी जैसा या रूप सनातन जैसा, किंतु जानबूझ करके कुएं करकट कचरे जितने हैं जगत के जंजाल उसी को अपने में भर रखते हैं। क्या दूसरों को उपदेश देने के लिए काम है, काम को दूर रखो, और जितना काम है विश्व का वो कहां है? सब शास्त्र जानते हैं कृष्ण में अनुरक्ति नहीं है, भागवत में जो कहा गया उसको पालन नहीं करते, यदि प्रणय राखते चाओ गौरांगी रसने तबे तबे छोटो हरिदास कथा थाके ज्ञानो बने। यदि चैतन्य महाप्रभु के साथ में प्रणय प्रेम रखना चाहते हो, कृष्ण के चरण में प्रेम रखना चाहते हो, तो क्या रखो यार? छोटो हरिदास, छोटा हरिदास है क्या? एक चावल मांगने गया एक महिला के पास में, महाप्रभु ने आप बांध बाहर कर दो, लाल कपड़ा पहन करके और बाबा जी का वेश लेकर के तिलक लगा करके कंठी माला लेकर के त्यागी बन करके हमारे पास में आया, हमको कीर्तन सुनाता है और स्त्रियों से बातचीत करता, बाहर कर जीवन भर इसका मुख नहीं देखूंगा। ऊपर से दिखलाता है जो कृष्ण भक्ति करते हैं और करता है भक्ति किसकी? काम ही नहीं की, बाहर करो हमारे दरबार में आज से कभी नहीं आने पाए, उन्होंने प्राण तक छोड़ दिया किंतु उनको फिर से अपने पास में नहीं बुलाया। यदि कृष्ण के प्रति ऐसी प्रीति रखनी है तो पूरे कर्कट को हटा करके वहां पर अपनी गाड़ी में प्रेम का माल रखना होगा। प्रेम कैसा? अन्ना विलासिता सुन्नम ज्ञान कर्मार्जनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। कैसा भक्ति हो? अन्य अभिलाषिता, बस कृष्ण के अतिरिक्त और कृष्ण में कुछ कामना का बंध हो सकता है हम लोगों को, इसलिए कृष्ण को मत चाहो, क्या चाहो, तुम शक्ति है, इसलिए राधा जी को अपनी आराध्या मानो। राधा जी के बिना कृपा के नहीं होगा, यही श्रीमद् भागवत का सार है। अभी हम लोग किसी प्रसंग को वर्णन करेंगे, प्रेम क्या है, गोपियों का प्रेम क्या था, ये उद्धव जी बतलाएंगे, जो भागवत के सर्वश्रेष्ठ एक तरह से वक्ता है, कृष्ण के शिष्य है, कृष्ण के सखा है, उनके मुख से ये सब बताएंगे, जो गोपियों का प्रेम क्या था। कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानती, किंतु अपनी सहेली जो राधिका जी हैं, वही इन जीवों की एकमात्र स्वामिनी है, आराध्या है, ईश्वरी है, सब ये भागवत का था। तो पूरे करकट कचरे जितने हैं जगत के, वो निकालो अपने मन से, अन्य अभिलाषिता कोई प्रकार की अपने सुख की अभिलाषा मत रखो, नहीं तो कृष्ण नहीं आएंगे। मैं ये बहुत सुंदर स्वादिष्ट आम का फल है, बस देखते ही खाने की इच्छा, तुमको भक्ति नहीं होगी। आज रसगुल्ला बनाए खूब सुंदर, खाने की इच्छा हो तुमको नहीं होगी। जहां देखने की इच्छा हो, देख रहा तुमने रसगुल्ला बहुत सुंदर है, ये कृष्ण खाएंगे। कृष्ण कोई अच्छा फल मिला किसको दो, कर्मण्य व अधिकार से मां फल इसको दाचर, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, इसलिए साधन करो कृष्ण के लिए और उसका जो फल है वो कृष्ण को निवेदन करो। और नहीं तो सुनने के लिए अच्छे अच्छे लोग आए, अच्छी अच्छी लड़कियां आए और धर्म में नजर लग गई तो गया भागवत, उड़ जाएगा वहां से, इसलिए उसका फल तुम मत मलो। भागवत की कथा करें, खूब प्रशंसा हो रही है, बाबा पक्का तो बहुत सुंदर होता है, तो जे ये मेरी गुरु जी की कृपा है, मेरी नहीं। और ये कृष्ण कथा का ये रस रस हमारा इसमें कुछ नहीं है, तब तक बच जाएगा, और नहीं तो गए जहां दोनों, खुदा की कसम, खुदा की कसम, गए दोनों जहां से खुदा जाओगे वहां पर। इसलिए इन चीजों को रखना चाहिए, इसलिए हमारी गाड़ी में पूरे कर्कश न रहे, अन्न अभिलाषिता न रहे, ज्ञान कर्म नहीं है। जब अद्वैत बात के प्रति इतना भी आदर हुआ तो गए दोनों जहां से खुदा की कसम। इन चीजों को खूब याद रखो, यदि किसी कर्मी और धनी के प्रति तुम्हारी ये बड़ी, ये बहुत बड़ा आदमी है, ये बड़ा आदमी है ना माया का, वो सबसे बड़ा शिकार है, इस चीज को समझो ना? ये बहुत बड़ा भारी धनी आदमी है और बहुत विराट व्यक्ति है, मतलब क्या, तुम्हारी नजरों में माया में जो सबसे डूबा हुआ व्यक्ति है वो तुम्हारे लिए बड़ा है, तो तुम उसी में जाओ। हम लोगों के लिए बड़ा क्यों है, सुखदेव गोस्वामी जी हैं, रूप सनातन है, भिखारी है, जो लंगोटी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, कृष्ण कथा ही उनका सर्वस्व है। ये पूरा कर्कट वाला चीज निकाल करके ये माल भरो हृदय में प्रेम कृष्ण के, ऐशांतिक प्रेम, कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तमा अनुकूल ने, भक्ति में वही चीज श्रेष्ठ है जो उसके लिए अनुकूल है, उसको ग्रहण करो, प्रतिकूल को छोड़ो, पूतना को छोड़ो, सत्ता सुख को छोड़ो। और एक और उसके बाद आया कौन, तृणावन, उसको सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा, कृष्ण ने उसको भी मारा। तृणावन क्या, युक्ति जाल, अपनी युक्तियों से लोगों की आंखों को अंधा कर और संसारिक भोग इत्यादि मुक्ति को बड़ा दिखलाना, ये है नावत का। ब्रज में बहुत बड़ी भारी आंधी आई, धूल से सब भर गया, आंखों में धूल चला गया, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। कृष्ण देखा जी ये सबको ये कष्ट दे रहा है, वो कृष्ण को गोदी में लेकर के उड़ गया, कृष्ण उसके गले में हाथ लगा दिया, ताजे तैर कर ले आकाश में, बहुत दिनों तब विमान में नहीं चढ़े थे, अभी तब तक बच्चे थे ना, इसलिए विमान में चढ़ने की इच्छा हुई, बस उसके गले में हाथ लगा दिया और उसको लेकर के वो उड़ गया ऊपर। जब घूमने के कृष्ण की लालसा पूरी हो गई, अच्छा अब मैया से दूध पिलाया, जल्दी से नीचे ले चल, वो नीचे ले जाएगा थोड़े कृष्ण ने थोड़ा सा कहा कि भाई नीचे लो, उन्होंने स्विच दबाया, स्विच क्या दबाया, ये स्विच दबाया और स्विच दबने के साथ ही साथ में आंखें लाल लाल रसगुल्ले के समान निकल आई। अब प्राण इधर नहीं उधर नहीं, बस झट वहां से गया। तो जो लोग भगवत भक्ति में कभी कृष्ण का क्या है, कृष्ण कुछ नहीं है, कृष्ण का कोई आकार नहीं है, रूप नहीं है, वो निर्गुण निरंजन निराकार है, भगवान तो किसी ने देखा, यदि देखा तो माने, ये सब जितनी युक्तियां हैं ये सब बेकार की। इन्हीं युक्तियों से साधारण लोगों से आंख को ज्ञान को बंद करके लोग भगवत भक्ति के जाने से रोकते हैं। कृष्ण उसको बचपन में ही उसे समाप्त कर देते, इसलिए ऐसी युक्तियों में नहीं पढ़ना चाहिए। कोई कोई कुछ कहता है तो हम उससे मिलाएंगे भागवत क्या कर, गीता में कहा गया, रामायण में क्या कहा गया, विशेष करके भागवत में यदि उसका अनुकूल समर्थन करते हैं कहते हैं कि मुक्ति चाहिए। अब आप देखिए कि भागवत में कहां कहा गया कि मुक्ति चाहिए, मुक्ति को सब जगह निराकरण, इसलिए भगवत भक्ति चाहिए। कैसी भगवत भक्ति चाहिए, यह भागवत में कहा गया वैसा, इसलिए किसी की बात नहीं सुनना है। परीक्षित महाराज ने वहां पर 88,000 ऋषि लोग थे, 88,000 प्रकार की बातें कही, किसकी सुना, केवल मास्टर सुखदेव गोस्वामी नारद गोस्वामी व्यास की बातें थी, और किसी की बात नहीं सुनी। उस तरह से संसार में कहने वाले लोग हमारे मन के अनुकूल मनोरंजन करके ऐसी सुंदर सुंदर बातें कहेंगे जो जनता को दुख कर, उनके पछड़ों में नहीं पड़ना है, इसलिए कृष्ण ने उसको चुनाव खताब कर दिया। इसलिए दूसरों सबकी बातें हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए, एकमात्र कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण के अतिरिक्त हमारा और कोई नहीं है, इस तरह का भाव रखना है। इसके बाद में वहां से लौट आते हैं, ब्रज में वृंदावन गया, डेढ़ अढ़ाई वर्ष या तीन वर्ष की वहां पर लीला की और बहुत सी गीताएं हैं। उसमें यशोदा जी के साथ में कृष्ण जी का प्रेम का वर्णन है, वात्सल्य का भाव, ये गोकुल तक है महावन, वहीं पर रहकर के वो चोरी भी करते थे मक्खन इत्यादि, मक्खन का यह चोरी यह सब प्रेम की लीला है। थोड़ा सा देखिए सुनिए तो कृष्णदास जी बोलिए तो वो मुक्ति को मटकी को कैसे
मार गया ढेला,
मार गया ढेला ढेला, आप लोग पास सुनिए। सबका आदि स्वयं अनादि, और वो आज इस प्रकार की लीला करके प्रतिष्ठित हरण कर रहा है। यशोदा मैया ने कहा कि ऐसे बांध करके रख, बांधने लगी, जब बांध रही है अपने केस का एक बांधने का रेशम की डोरी, अढ़ाई हाथ दो हाथ एक बड़ी कोमल रेशम की डोरी से बांध, ये खल और दूसरा खल कौन, उदू खल, दोनों के एक साथ में बांध दूंगी। ये सब कथाएं पहले आई है, मैं उसका साथ थोड़ा सा बतला रहा हूं। दो अंगुल कम पड़ जाती है, एक दूसरी रस्सी में आई, तीसरी रस्सी आई योगी गई, बस दो अंगुल कम पड़ती है, फिर रस्सी आई पांच हाथ की रस्सी जोड़ा से दो अंगुल कम पड़ गई, एक बार भी नहीं बची। गोपी यहां ताली देकर के हंसने लगी, क्या माजरा है, क्या बात है, ये बंद नहीं रही। हे गोविंद गोविंद, हे शालग्राम, हे प्रभो, हे नारायण, हमारे गोप से निकला ये और इसको मैं बांध नहीं सकती, बड़ी लज्जा की बात है। गोपिया ने जरा बांध करके देख रहा हो तो, अरे इसके ललाट में ब्रह्मा ही नहीं बंधन लिखा तो तू कैसे बांध देगी, तुम एक दो जन्म में नहीं बांध सकेगी, दस जन्मों में नहीं बांधेगी। और उन्होंने कहा मैं तो बांध करके रही, बांधने लगी। वृद्धिशाली रश्मियां आई, कितनी मील लंबी हो गई, और कृष्ण की ये पांच छह अंगुल की, बारह अंगुल की कमर नहीं बन सकी। क्यों नहीं बन सकी? कृष्ण की इच्छा के विपरीत उनको कोई नहीं बांध। कृष्ण की कृपा चाहिए, साधन करने से ही नहीं होगा। एक साधन का एक अंगुल हमारा साधन होना चाहिए, और दूसरा भगवान की कृपा होनी चाहिए तो बन रहे हैं, अन्यथा कृष्ण को कोई नहीं बांध। जो सुधा जी चाह रही थी कि मैं बांध लूंगी, तो अच्छा तब बांध लो। बांधी 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 सबरे से, बिना खाए पिए दोपहर और भी हो चला, पसीने से तरबर हो गई, मोती जैसे पसीने की बूंदे टप 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 टप, केस खुल गया, उसमें मालाएं उसके फूल छूट करके गिरने लगे, मुख विवर्ण हो गया, लाल हो गया, लज्जा से विवर्ण हो गया। सोची मैं इसको नहीं बांध सकता, हे प्रभु मैं क्या करूं, इन शक्तियों के सामने हमारी लज्जा रहो। जन वो शरणागत उधर में हुई, और इधर में कृष्ण की कृपा आई। कृष्ण की कृपा दूर नहीं थी, कृपया स्वबंधने, हम लाख कोशिश करेंगे, जब तक भगवान की कृपा या भक्तों की कृपा नहीं होगी तब तक उनको नहीं बांध सकते, उनको नहीं मिल सकते हैं। इसलिए भक्तों की कृपा होनी चाहिए, और भक्तों के कृपा के अधीन भगवान की कृपा है, इसलिए यहां पर भगवान की कृपा भी चाहिए और अपना साधन भी चाहिए, ऐसा साधन कि कृष्ण को दया आ जाए, और वो बनिए छठ वो बन गए। यहां तक को ही गोकुल महाबंधी और भी सब बातें हैं, इसके बाद में आए वहां वृंदावन। उनका सबसे पहले काम था बलदेव प्रभु जी और वो गैया चराने निकले, भूख लगी है, ताल फल पके हुए हैं, पाती में ताल बन है, मधुपुरी में है, मधुपुरी के पाती में मधुबन नहीं, उसी के पास में ताल बन, पहले मधुबन मथुरा उसी के अंदर में है, और उसी के पास में ही ताल बन, पाती में मधुबन में वो गैया चरा रहे थे। इतने में ताल का सुंदर सुगंध आया, बच्चों ने कहा कि बड़ी भूख है, खा लो कुछ, पासी में तो बन है, ताल फल पड़े हुए हैं, कभी वहां पर हम लोग जा नहीं सकते। कंस ने अपने खाने के लिए ही बगीचा बनाया है, उसमें किसी को नहीं जाने देता। जो अपने लिए बगीचे बनाते हैं, अपने लिए रहने के लिए घर बनाते हैं, उसमें ठाकुर जी को नहीं रखते। बगीचा बनाते हैं किंतु उसका फल भगवान को नहीं देते। अपने लिए बहुत सुंदर घर बनाया, और उसमें सुंदर सुंदर गर्मी के दिनों में कूलर लगाया, घर एकदम ठंडा, और ठंडे दिन में गर्म बनाने के लिए कुछ भी व्यवस्था है, तरह तरह के खाने की चीजें हैं, सुख भोग की चीजें हैं, किंतु कृष्ण का इससे संबंध नहीं। तो ये बेकार की, इसी का नाम है गधा, गर्दवासुर या धेनु का सुर। गधे को कहते हैं कि तो बड़ा गधा है, माने क्या, मूर्ख है। जानवरों में सबसे मूर्ख यही गधा होता है, इसलिए मनुष्यों में जो भगवान का भजन नहीं करते वो दो बैल वाले होते यदि चतुष्पद गधे के समान मूर्ख है। उन्होंने क्या किया, जैसे वो कंस को ही केवल देगा, दूसरों को कृष्ण के भक्तों के लिए नहीं देता है। बच्चे को आगे करते हुए, बलदेव और कृष्ण को आगे करते हुए जितने बच्चे थे वहां पर आए, बलदेव प्रभु जी ने एक पेड़ को पकड़ा और ऐसे हिलाया और धप 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 करके फल गिरे, सुन करके धेनुकासुर बड़ा क्रोधित हुआ, और वहीं से अपने मधुर बोली में खूब कैसे करते हैं ना, मधुर बोली उस प्रकार से करता हुआ, रेंकता हुआ वहां से चला, हमारे बगीचे में कौन घुस आया। कृष्ण बलदेव को देखा, उसने पिछले पैरों से, आगे पैर से नहीं मारे, ये गधे इत्यादि पीछे के पैर से मारते हैं, बस बलदेव प्रभु जी ने झट उसको पकड़ लिया और घुमा करके उसी के ऊपर में दे मारा। एक पेड़ टूटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत से पेड़ गिर गए और फलों से वो भर गया और वहां पर जितने अशु थे अशुओं को उन लोगों ने मारा। बड़ा विभत्स कांड हो गया। आए थे फल खाने के लिए किंतु उनकी लीज से, उनके रक्त से, उनके मांस से एकदम जंगल थक गया। बच्चों ने आज फल नहीं खाया, वहां से चले गए। किंतु तब से ये लोग मारे गए। कंस को कहने के लिए, संवाद देने के लिए भी कोई नहीं बचा। तो जो गधे लोग खुद ही भगवान का नहीं भजन करते और दूसरों को भी बाधा देते हैं कृष्ण भक्ति का रस आस्वादन करने में, वो सब गधे मूर्ख है। वो क्या करते हैं, ये जो संसारिक सुख है इसी को समझते हैं कि ये अच्छी चीज है। भगवान के भक्ति रस को वो नहीं समझते। इधर सुनिए, इधर सुनिए। तो वो इस चीज को नहीं समझते हैं, इसलिए जो भगवान की भक्ति देकर के संसार के सुखों में, संसार के कर्तव्यों में लगा हुआ है वो सब करते हैं। उसका कर्तव्य क्या था? कंस ने जो कहा है वो इसका पालन करना हमारा कर्तव्य है। उसी तरह से जो लोग संसारी कर्तव्य को प्रधान कर्तव्य मानते रहे हैं और भगवान का भजन करने को नहीं मानते हैं, ये सब कर गए। कहते कि मैं, मेरी स्त्री है, पत्नी है, पुत्र है, इनके प्रति हमारा कर्तव्य कर्तव्य है। अरे तुमको पानी किसने दिया, हवा किसने दिया, माता के गर्भ में तुम्हारी रक्षा कौन थी, तुम्हारा पिता कौन है? नहीं विचार करते। इस तरह से विचार करने पर मालूम होता है भगवान के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वही परम कर्तव्य है। ये धेनुकासुर को मार करके ये बनता है। पासी में एक दिन खेलते हुए जा रहे थे, काली नाम का एक नाग काली हरद में था। इस कथा में ये सार है, यदि भगवान को पाना चाहते हो, भगवान के भक्तों का आदर करो, यदि भगवान के भक्तों को, परिकरों को तुमने कष्ट दिया, उनसे शत्रुता की तो भगवान से कभी नहीं मिलेंगे और तुमको नरक में जाना पड़ेगा। इस चीज को समझो। कृष्ण के परिकर हैं गरुड़, सांप भी उनके भाई हैं, दोनों में अनबन थी। सांप चाहते थे गरुड़ जी को ध्वंस कर दे और गरुड़ देखते थे इनका कल्याण हो, वो सत्य में इनकी कल्याण की भावना करते। अपनी मां को उनकी मां की दासता से छुड़ाने के लिए अमृत ले आए, दिया और दे करके भी छोड़ना नहीं चाहते। शत्रुता हुई वृंदावन में, तो वहां पर सांपों से युद्ध करने के बाद में सांप काली भाग करके चला आया वृंदावन। वो जानता था कि यहां पर काली हर में वृंदावन में सौभरी ऋषि ने गरुड़ जी को अभी संपात किया। गरुड़ तुम यदि यहां आएगा तो तुम मर जाएगा। किस लिए? एक वहां पर मत्स्य था, मत्स्य माने मछली का पुरुष। एक दिन गरुड़ ने उसे खा लिया और उसकी स्त्रियां रोने लगी। सौभरी ने कहा तुम यदि यहां पर आया फिर मांस खाया तो तुम मर जाएगा, तुम्हारा शरीर उड़ जाएगा। गरुड़ जी हंस करके चले गए। उन्होंने देखा ये नहीं जानता कि मैं भगवान का प्रिय हूं, भक्त हूं, ये नहीं जानता, इसलिए ऐसा किया। फल क्या हुआ? बहुत खराब फल हुआ। कुछ दिनों के बाद में काली वहां आया और उसके बीच से जितने से मछली और मत्स्य दोनों सब मर गए। और सबरी ऋषि का क्या हुआ? सबरी ऋषि को काम उत्पन्न हुआ हृदय में, जो 10,000 वर्ष तक नंगे रह करके, पानी में रह करके तपस्या करते थे, काम अभिलाष हुआ और किनके मानधाता की 50 लड़कियों के साथ में अपने योग बल से 50 रूप धारण करके उनकी 50 कन्याओं का विवाह करके 10,000 वर्ष जो बिता दिया। 10,000 के बाद में उनको कुछ चेप हुआ, फिर उनको छोड़ करके आए और आकर के भगवान का भजन करने लग गए, जो लोग छोड़ दिया। काली उसी में रहता था, भगवान ने उसको दुख करने के लिए क्या किया? एक दिन विष से रहित करने के लिए उसने खुद पड़े, खुदने के बाद में काली उनको मारने के लिए आया, विष दसने के लिए, और दसने लगा और अपने खेतों से उन्हें बांध दिया और गले में छाती में काट दिया। उनकी स्त्रियां जो थी नाग पत्नियां बड़ी भक्त थी, ये काली तो बड़ा था, ये मर क्यों नहीं जाता, हम विधवा हो जाना हमें मंजूर है। अब इतने में कृष्ण लपक करके ऊपर आए, उसके सिर पर चढ़ गए और अपने पैरों से नृत्य करते हुए ताते थे नाग भिन्ना इत्यादि नृत्य करते हुए गोपियों को दिखला रहे हैं कि मैं कैसा नृत्य कर रहा हूं, और एक एक फण को तोड़ने लगे और रक्त उगलने लगा। उस समय में जब रक्त उगलने लगा, स्त्रियां तो भक्त थी, उनको पहले बतलाया था काली को जो कृष्ण की भक्ति करो, उनसे शत्रुता मत करो, वो माना नहीं। आज समझा जो मैं किसी से मैं डरता नहीं था, मैं गरुड़ से भी लड़ा, किंतु गरुड़ से जितना डर नहीं हुआ, इतना भार इसके बच्चे के पैर में इतना है और इतना बल है, तब हुआ जैसे अरे ये हो न हो ना रहे। यही भाव आया, उनकी पत्नियां समझ गई, पत्नियों ने प्रभु अब हमको विधवा मत बनाइए, अब ये भक्त होने जा रहे, अब अनुकूल हमारा होगा। इसलिए पहले कहती थी इसे मार डालो विधवा हो जाएंगे हम, वो अच्छा है, किंतु अब नहीं, भगवान का भजन नहीं करता उसे कोई संपर्क, यदि वो भगवान का भजन करता है तो हम दोनों का कल्याण होगा, इसलिए उसकी सेवा हो। तभी को भी बैरी सम यद्यप परम सने ही, क्या जिनके प्रिय न राम वैदेही, जिनके प्रिय न कृष्ण और राधा जी प्रिय नहीं है, उनको बैरी के समान में छोड़ो। सजय पिता प्रहलाद, सजय पिता प्रहलाद भीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु सजऊ कंत ब्रज बनितन भय जगभ। ब्रज की पत्नियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया, बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया, भरत जी ने अपनी मैया को छोड़ दिया, और पिता को किसने छोड़ा? प्रहलाद ने अपने पिताजी को छोड़ दिया, जगत में मंगल ही हुआ। इसलिए जो भगवान का भजन करने वाले हैं उन्हीं के साथ में हमारा संपर्क है, यदि हम कल्याण और शांति चाहते हैं तो, और यदि कल्याण नहीं चाहते संसार में डूबे रहो, लाख कोटि जन्म तक इस दर में चलते रहो, उसे कल्याण नहीं। इसलिए भक्तों का संग होना चाहिए, भक्तों की कृपा होनी चाहिए। अंत में कृष्ण ने उसे छोड़ दिया और अपने पैर का एक छाप दे दिया, जाओ गरुड़ भी अब तुमसे मित्रता करेगा, तो वो रमण। इसलिए ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, वैष्णव के साथ में कभी द्रोह न हो, जो भगवान का नामाश्रय किए हैं, शुद्ध गुरु का पदाश्रय किए हुए हैं, शुद्ध गुरु से हरिनाम दीक्षा लिए हैं और शुद्ध शुद्ध गुरु में उसको पालन कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, उनके साथ में पैर विरोध मत करो, अपराध मत करो, नहीं तो हरिनाम करने से भगवान की कथा भागवत की कथा सुनने पर भी या भागवत की कथा सुनने पर भी भक्ति नहीं होगी। इसलिए बलदेव प्रभु जी ने सुत गोस्वामी का गला ही काट दिया, वो तो भागवत की कथा कर रहे थे, क्यों? वैष्णव को आदर नहीं दे सके थे, बलदेव जी को आदर नहीं दिया, उस सभा में सौनक इत्यादि ऋषि से आदर नहीं दिया, इसलिए भी वो काटा। इसलिए हाँ, भागवत की कथा सुनने से ही यदि संसारिक चीजों की लालसा है, भागवत की कथा सुना करके हम अपना संसार का पालन पोषण करेंगे, ये भक्ति का विचार। इसी तरह से धीरे 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 ले आए, जब चित्त शुद्ध हो गया, सदगुरु से दीक्षा हुई, बलदेव प्रभु जी गुरु तत्व हैं, इसलिए धर्म का शुल्का वध किया। इसके बाद में काली का ये प्रसंग आया, काली के प्रसंग में होने के बाद में धीरे 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 इन्होंने सुनाया होगा वो कुमारियों की पूर्वराग में, उन्होंने कत्यानिक व्रत किया, सब कुछ छोड़ करके यमुना की शरणागत हुई। यह यमुना जी कौन है? कृष्ण की प्रिया है। यमुना में रोज स्नान करके उनके अनुगत्य में कात्यायनी माने जोगमाया, जोगमाया की आराधना की, इसलिए कृष्ण ही हमारे नंद सुत पतिम देही, कृष्ण को ही हमको पति बनाए। कृष्ण का अतिरिक्त हमारा और कोई पति नहीं है। ये पति है दो दिन के लिए, 100 वर्ष के लिए, ये हमारे पति नहीं है, बल्कि हमारे पतियों के भी पति वो कृष्ण है। इस चीज को समझा जाए, ये जगत में विवाह शादी करके उसमें रमणे के लिए हम नहीं आए हैं, हम किस लिए आए हैं? कृष्ण को पति करने के लिए आए। जिसने कृष्ण को पति बना लिया उसका जीवन सार्थक, और जो कृष्ण को पति नहीं बना सकते, संसार को ही अपना पति बनाया, उसका जन्म सफल। इस चीज को समझना चाहिए, नहीं तो मीराबाई अपने पति को छोड़ करके चली जाती, गोपी अपने पतियों को छोड़ करके कृष्ण के पास में क्यों जाती? इसके बाद में गोपियों को, उन गोपियों को कृष्ण ने चीरहरण माने क्या, लज्जा तक भी कृष्ण के लिए उन्होंने प्रत्याग कर दिया, तो और क्या बात। स्त्रियां सब कुछ छोड़ सकती हैं, एक चीज नहीं छोड़ सकती, लज्जा नहीं छोड़ सकती। विशेष करके राजपुताने में देखिए, वहां की विख्यात प्राणियों ने अपने पतियों के मर जाने पर जौहर व्रत माने क्या, जब उनके पति चले गए युद्ध में जा रहे हैं, तो देखा जो पतियों की लालसा कुछ स्त्रियों पर है, हमारे जाने के बाद में क्या होगा, यदि में युद्ध में हम लोग मारे गए तो हमारी स्त्रियों को पकड़ ले जाएंगे। स्त्रियां इस भाव को समझ गई, काजे ठहर जाता और 2 मिनट ठहर करके तब जाना युद्ध में, बस चिता लगाई विराट, वो थक थक करके जलने लगी चिता, उनके सामने देखते ही स्त्रियां वो जितनी थी परम सुंदरियां बस उसी में जल करके खा, पतियों को बड़ा जोश और उत्साह हुआ, ठीक है अब हम लोग प्राण जाने तक भी अपने प्राणों को उत्साह कर देंगे, और युद्ध में गए, एक एक ने 10-10, 20-20 मुसलमानों को मारा, बड़ा भारी युद्ध हुआ, जीत तो हुई ऊपर से मुसलमानों की, किंतु जीत किसकी हुई? हिंदू संस्कृति की जीत। इस चीज को समझना चाहिए अच्छी तरह, तो इसलिए जिनके प्रिय न राम हो गए तजिए कोटि बैरी समझ, जब तक परमर्श ने ही अत्यंत स्नेह का पात्र है उसको छोड़ देना चाहिए, ये भागवत सुनने का ये फल है। तत्पश्चात हुआ कृष्ण ने वेणु बजाई, वेणु भी फिर चर को मुग्ध कर दिया, गोपियां घरों में बैठ करके दलों दलों में बातचीत कर रही हैं, क्या बात कर रही हैं, अशुद्ध वेणु की सब स्मरोदयम, स्मर का प्रेम का उनके हृदय में बाढ़ आ गई, सब कुछ भूल गई, तन मन सब भूल गई, और कृष्ण चिंता में आए, कैसे चिंता में आए, बरहा पीड़म नद बर बहु कर्ण यो कर्णिकारम विभ्रदास कनक कपि संतति। वेणु बज रही है कहां, वन में, गोपियां घर में बैठी है और सुन रही है और कोई नहीं सुन रहा, कौन बजा रहा है? कृष्ण बजा रहा है। कैसे कृष्ण? ये श्रीमद् भागवत में सर्वोत्तम कृष्ण का ये रूप, यही मनमत मनमत ये स्वरूप है। श्याम कलेवर ऊपर से विद्युत जैसी, जैसा आपकी काम हवा में लहरा रहा है, बैगी मेहनती माला 5 फूलों 7 फूलों की सुंदर, बेली चमेली जूही जाती इत्यादि जो मालाएं हैं सुंदर, जिसके ऊपर में भौरे मंडराते हैं, कमल के ऊपर में भौरा मंडराएगा, गुलाब के ऊपर नहीं, और जो पश्चिम प्रदेश वाले फूल हैं उस पर नहीं, क्यों? उसमें मधु नहीं, पराग नहीं है, कमल में सबसे अधिक मधु होता है, कमल में बंद हो जाना वो भौरा बल्कि उसमें बंद हो जाएगा, लकड़ी को काट कर निकल जाएगा, किंतु उस फूल के कोमल पखड़ में उसको काट करके नहीं निकलेगा, प्रेम से वो बंद हो जाता है। ऐसे बेली चमेली जूल जातू मोलस्सी इत्यादि के मालाओं से, उसमें तुलसी के मंजरियां पत्तों के सहित उसमें झुकी, उस पर फौरे मर जाए, बच्चे उनका कीर्ति कर जाता, कन्हैया की जय हो, कन्हैया की जय हो,
इस प्रकार से गान कर। इस तरह से कृष्ण का अपूर्व सुंदर रूप गोपियां देख रही हैं। आचल नहीं चाहिए, इस रूप को देखना चाहिए। अखिल पराम विदाम,
एक वन से दूसरे वन में कृष्ण गरीबों को लेकर के जा रहे हैं और गोपियां क्या कर रही हैं?
अपने घर से देख रही हैं, कोई जंगले से देख रही है, कोई अट्टालिका से देख रही है, कोई अपने झरोखे से झांक रही है, कोई कुंजों से देख रही है। कृष्ण हमें न देखे या आंखें आंखें छोड़ देखे और किसी चीज की देखने की जरूरत, तन्मय होकर के देखने देख रहे। उसमें कृष्ण जब जा रहे हैं सखा लोग उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं? कृष्ण और बलदेव, ये दोनों नंद के पुत्र हैं। वहां देवकी बलदेव के पुत्र वहां पर नहीं है ब्रज में, ये नंद बाबा के पुत्र हैं, क्योंकि बाबा ने उनको दोनों को ही पुत्र माना और दोनों बच्चों ने भी उनको ही माना। ब्रजेश सुतो अनुदयन युष्टम, उसमें जो जा रहे हैं, जो आगे जा रहे हैं, उनके मुख में सिंगा है। सिंगा माने इस तरह का सिंगा। तो सिंगा की चिंता, सिंगा दो चीज का होता है, एक जो भैंस या भैंसे के सिंह का जो सिंगा बनता है वो नहीं, नारियल का तो जो पेड़ का पत्ता जो होता है ना, या ताड़ का पत्ता, उसको उन्होंने बना रखा है, बहुत ही सुंदर वो बजता है। बलदेव प्रभु जी अपने सखाओं को साथ में बजाते ही व्यक्ति आगे जा रहे हैं। क्यों आगे जा रहे हैं? कुछ बात है ने? बड़े भैया है ना, बड़े भैया जानते हैं कि बहू के साथ में हमारा छोटा भैया यदि होगा उसको लग जाएगी, आगे चलना चाहिए। उनको स्वच्छंद गति से मिलन होने के लिए आगे कुछ बढ़ गए और पीछे से अनुवेणु विष्टम, जो पीछे हैं अनु माने पीछे, और जो बेणु बजा रहे हैं उनको बेणु बजाते हुए देखकर के जो कटाक्ष से बड़े करुण भाव से जीवों की तरफ में देख रहे हैं, गोपियों की तरफ में देख रहे हैं, और वो गोपियां क्या कर रही हैं? आंखों से वो अर्चन कर रही हैं उनका। गोपी नाम ननो बलार्चित तरम गो गोप संघा वृतम फूल नीवर कंठ बिंदु वदनम बरहावतम संप्रियम श्रीपत्तार कौसुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपी नाम ननो बलार्चित तरम गो गोप संघा वृतम गोविंदम कलवेणु वादन परम दिव्यांगम भूषा भजन। अरे इनका भजन, इनका दर्शन तो करो, कौन से गोपियां अपनी आंखों से इनका आर्चन कर रहे हैं। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे कृष्ण ही जिनकी अपनी आंखों से जिनका अर्चन कर रहे हैं उन गोपियों का, ऐसे अर्चन करते हुए कृष्ण का तुम दर्शन करो, यही जीवन में सबसे अच्छी प्रकार आंखें तब सफल है, और यदि ऐसा नहीं देखा तो तुम्हारी आंखें संपूर्ण रूप से विफल है। एक सती जो सती तुमने कहा तो बहुत सुंदर, किंतु एक ही भूल गई। यहां पर ब्रजेश सुत का मतलब, यदि ब्रजेश सुत माने यदि इसमें बलदेव प्रभु रहे और थोड़ा सा आगे ही रहे तभी काम नहीं चलेगा। यहां पर ब्रजेश सुत हो माने यहां पर बलदेव जी नहीं है, सुताश्च सुतयो, सुता कौन? विश्वभानु की सुता राधा जी हैं और इधर में कृष्ण है सूत, किसके? नंदन। इस अर्थ में सुता सुतयो मिल करके ये सुतयो हो गया है, इसलिए यहां पर विश्वभानु नंदिनी है। तो यहां पर अनुवेणु कैसे हुआ? अरे कृष्ण ने वेणु बजाई, राधा जी ने उसे झपट करके छीन लिया और वो बजाने लगे। कृष्ण बजा रहे हैं, हवा कौन भर रहा है? राधा जी। और वो अंगुलियों को नचा कौन रहे हैं? अनु। पहले वो आवाज निकलती है और उसको बजाती, इसलिए अनुदेव युष्टम, और अपने कटाक्ष से दूसरों को मुग्ध कर रहे हैं और दूसरों की गोपियों को भी मुग्ध कर रहे हैं। सभी चलो तो चलो, हम लोग उनका दर्शन कर ले, आंख सफल हो जाएगी। कैसे जाएं? निगोड़ी सास तो बैठी है जोकिया, कैसे जाए? और ननद भी बैठी है, चले। अरे बैठने को क्या कर लेगी? उसकी बेटी नहीं जा रही है देखने के लिए? हमने देखा तो यही मामला गड़बड़ हो गया। उसकी साथ जा रही, वो भी जा रही है, जो कर क्या क्यों जाती है? जो कुछ भी करना है कर ले। तो नीपीतम, निपीतम माने क्या?
पीना,
पिलाना। चलो पियाए, पियाए क्या पियाए? पियेंगे क्या? पीना क्या है? जितनी बाधाएं फिर लज्जा की ये दूर करना, ये उस चीज के पीने से ये लोग लज्जा की दूर हो जाएगी। ये क्या चीज है? अधर रस, ये जो बंसी के माध्यम से निकल गई। एक बार यदि पी लिया, ये रहे रहे सामने कोई भी बात नहीं रहेगी। अब तो उस समय निर्लज्जम हो जाए, बस उनको चलो देखे और यहां पिया। किसे पिया? कानों के माध्यम से। उसमें लोग लज्जा जो कुछ है सब छूट जाएगी, किसी का भय और चिंतन नहीं रहेगा। इस तरह से चलो कृष्ण का यह रूप हम लोग दर्शन करते हैं। वेणु गीत का एक एक श्लोक, ऐसे जितने भी श्लोक उसमें हैं, एक एक से अद्भुत। नद्दा तदुपधार्य मुकुंदरीत आवर्त लक्षित मनोभव भग्ने पेगा आलिंगन सवित उर्म भुवई मुरारे गृहणंतिमलोपहार धन्यास मूढ़ मतयो हरण्य एता। हरण्य के हरण्य ये धन्य है जो अपने पति कृष्ण सार को अपने पीछे लेकर के कृष्ण का दर्शन करने के लिए मानो अपने मुख से उनका मुख चाट रहे हैं। लज्जा है उनको, उनको तनिक भी लज्जा है। अरे पति हमारे साथ में, यदि वही हमारे पास में है, डर का है का? संया भय कोतवाल, अब डर का है का? अब संया ही यदि हमारे कोतवाल हो गए तो अब डर किस बात का? अब संया माने वो कृष्ण सार हिरण उनके पीछे पीछे चल रहा, और कहा जब देखो तो संपूर्ण रूप से मैं तुम्हारे पीछे हूं, जगत में कोई कुछ कह रहे तब क्या कर लेगा तुम, तुम्हारे ऊपर कर। ये हिरणिया बड़े प्यार के साथ में कृष्ण के प्रणय भक्त को देख रही। वो भी आ कहती कि हो मर करते हम यदि हिरणी हो जाती तो हमारा पति भी हमारे साथ में कृष्ण के दर्शन में सहायक होता। अभी तो ये निजोड़ा पति यदि सुन लेगा ये कृष्ण का दर्शन करने गई थी तो घर से निकालेगा, मारे पीटेगा, गाली गलौज करेगा, इसलिए मर करके वही आता। कहते हैं कि अरे देवियां कृष्ण की इस लीला को देखकर के मोहित होकर के अपने पतियों की गोद में गिर गई। हाँ हम स्त्रियों हाथी इस प्रकार की तो कृष्ण से मिल जाते। देवताओं ने अपनी स्त्रियों के लिए कुछ नहीं कहा। गाय के बछड़े हैं कृष्ण की जनी फनी हुई, बच्चों के मुख में दूध है, स्तन भी मुख में है, दूध गले में आया, न निगल रहे न आभार है, बस कान को ऐसे खड़ा कर दिया, उसी से पी रहे हैं कृष्ण का रूप। आंखों से कृष्ण का रूप माधुर्य और कान से उनकी बंसी का माधुर्य, दोनों पी करके एकदम स्तन है। गाय खास का कौल लेकर के बस वहीं पर तीन गुच्छ लेकर के न बाहर जाता है न भीतर आता। नदियां क्या करती हैं? आवर्त उसमें आया, नीचे जो पानी जा रहा था बह करके वो नीचे से ऊपर आने लगा, और ऊपर वाला आ रहा है वहीं पर समाप्त हुआ। भ्रमर से कमल के फूल को तोड़ दिया, हाथों में लेकर के मानो कृष्ण के चरणों में अंकित दे दिया। पानी इतना लाया, इतना पानी बढ़ा भ्रमर के कारण, जो कृष्ण के यहां आया, कृष्ण को मानो आलिंगन कर दिया यहां। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, निर्विकार रहे। जब कृष्ण को निर्विकार देखा तो क्या थी उनको लज्जा ही नीचे उतर आई, और कर्ण चरण कमलों में उपहार दे दिए। बहुत से सुंदर सुंदर उसमें भाव है। पूर्णा पुलिंद उदाय पदाग सिंकुमेर दैता मंदिर तत्सन स्मर उजतृषितेन नित्यंति आनंद सदा। राधा जी के कुछ कुमकुम में नहीं, वो राग कुमकुम, और उसको कृष्ण के चरणों में वो लगा। कृष्ण सवेरे घर लौट रहे हैं, घासों के ऊपर में चरण कमल पड़े, उसमें लगा हुआ कुमकुम घासों के ऊपर पड़ा, उस पर ओस की बूंदे हैं। इतने में बिन्नियां पुलिंद की कन्याएं और उसको देख करके उसको अपने हाथों से लेकर करके अपने समस्त अंगों में लगा, उसको देख रही है राधा जी, और मरकत में बिल्ली कन्या हो जाती पुलिंद। आज कृष्ण के चरणों का यह कुमकुम तो आज मैं अपने अंगों में लगा लेकर भूल गए कि यह कुमकुम कहां का है, हमारे ही अंग का है, सिर भूल गई और वो पुण्य भी हो सके जन्म लेना। इस प्रकार से तन्मय होकर के कृष्ण की मधुर बंसी का प्रशंसा करती हुई, बल्कि उसको अपनी शौक समझती हुई, कटाक्ष करती हुई उसके प्रति उसका प्रेमी नाथ, यह सब प्रेम की इच्छा। तत्पश्चात कृष्ण ने पूर्णिमा को ये किया बंसीवाद, सब गोपियां आई, राशक इत्यादि हुआ, इस सबका वर्णन आपको सुनाया गया। इसके बाद में रात के समाप्त होने पर शंखचूड़ का उन्होंने वध किया, विश्वासचूर का भी किया। नारद जी आकर के बोले अब आपकी लीला समाप्त प्रति हो रही है, अरे और भी तो भक्त हैं, माना कि ये ब्रजरस आप इसे निकल नहीं रहे, किंतु और भक्तों को भी तो छोड़ना नहीं चाहिए, मथुरा में भी बड़े बड़े भक्त हैं, द्वारका में भक्त हैं, वहां पर भी जाना चाहिए, और भी बहुत सी लीलाएं हैं, और आपका लीला संगोपन का समय भी आएगा, इसलिए अब यहां की लीला समाप्त करके अब जरा उस घर याद कीजिए, आपकी मैया और बाप को बड़ा कष्ट दे रहा है, अब वहां पर चलना है। इस तरह से अक्रूर भेजा गया, अक्रूर ब्रज में आए, कैसे कृष्ण को और बलदेव जी को दे दे। आज वो सब कथाएं हुई ब्रज में, अक्रूर वहां आकर के और वह मथुरा में उनको ले आए, आज वहां आकर के कंस का वध किया, कंस के वध करने के बाद में उनकी हथकड़ी बड़ी फुराई। इसके बाद में कृष्ण ने वह राज्य अब उनको उग्रसेन को वो सम अपने राजा नहीं हुए, राज्य से उनको क्या मतलब, विश्व ब्रह्मांड के राजा। इसके बाद में आज उद्धव जी को ब्रज भेज रहे, दूध कौन भेजता है, किसके पास भेजता है, जिसको गरज होती है वो दूध भेजता है दूसरों को, गोपियों को गरज नहीं, किसको गरज है, कृष्ण को। साथ साथ मैं जगत के जीवों को भी शिक्षा दे, किस प्रकार से ये शिक्षाएं दी, अब हम लोग इसको उद्धव संवाद में इसका वर्णन करेंगे शाम। आज यही तक लीला समाप्त रहे, बहुत सुंदर विधायक ये बल्कि भागवत का ये हृदय है, उनकी श्रद्धा से लेकर के इधर में 33 अध्याय और फिर उसी के बाद में जुगल भी और उसके बाद में अक्रूर का ब्रज में जाना, वहां से ले आना और उद्धव जी का ब्रज में आना, मथुरा की दृष्टि से ब्रज को देखना, इसका ये साथ ब्रज का प्रेम क्या है, इसका उन्होंने 47 अध्याय में वर्णन किया है, उसका आज वर्णन करके हम लोग क्रमशः आज चलेंगे उत्तरार्ध की लीला में हम प्रवेश करें। वंशा कल्प तुर्थ विवाद पतिता नाम पाओ
उसमें मर रहे हैं, उसे भी अधिक कष्ट होता है मरने में, उसमें उन्हें टट्टी पैखाना पेशाब सब निकल आता है, कुछ याद नहीं। यदि भगवान ने उसको याद रहने दे, कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कि जन्म लेना और मरना चाहे, इतना ही नहीं, माता के गर्भ में यंत्रणाएं होती हैं जिसकी हम लोग कल्पना नहीं करते, यदि उसकी याद होती ना, वो तो जन्म से तो रोते हैं, क्योंकि जहां जन्म हो गया माता जी की गोदी में आ गए, बहनों की गोदी में आ गए, उस समय में भूल जाए, किसी को किसी को कुछ देर तक याद रहा भूल जाए। इसके बाद जन्म से लेकर के किशोर अवस्था तक कुछ मालूम नहीं होता, जब संसार करते हैं विवाह शादी होती है, इसके बाद से आरंभ होता है, इससे करके बुरी स्थिति में जिस समय में लड़कों की शादी कर दी और वो अलग हो गए, लड़कियों को शादी कर दी तो अपने घर में चली गई, पानी देने के लिए कोई नहीं बचता, स्त्री थी वो भी चली गई, अपना पति थे वो भी चले गए, कोई भी देखने वाला नहीं, करोड़ों रोग आ जाए, आंख से दिखाई नहीं पड़ेगा, खाएंगे हजम नहीं होगा, इस तरह से करोड़ों जन्मों से हम कभी मछली हो रहे हैं, कभी सुअर हो रहे हैं, कभी गधे हो रहे हैं, कुत्ते हो रहे हैं, या मनुष्य जन्म सबसे सर्वोत्तम है। इसमें जो नहीं किया भगवान का भजन नहीं किया, फिर करोड़ों जन्मों में फिर घूमना पड़ेगा, सुअर बनने पड़ेंगे, गधे बनने पड़ेंगे और गाड़ी में जोत दिए जाएंगे, जी बाहर कर रहे हैं और ऊपर से पीट रहे हैं, आज यदि बैठ गए तो पोथ मरोड़ दें, तोड़ दें। इस तरह से कितना कष्ट, शास्त्रों ने इसका कुछ कुछ वर्णन किया। इसको देख करके प्रभु बड़े दयालु हैं। बोलो बैकुंठ धाम से एक किसी महात्मा को भेजा अपने शक्ति मैंने गुरु के रूप में, दीक्षा गुरु नहीं, अभी भेजा एक गुरु को, पथ प्रदर्शक गुरु को, जाओ कहना कि वही कृष्णचंद्र वृंदावन में से हम नवद्वीप में बलदेव प्रभु जी के साथ में आए हुए। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो तू जाओ वहां, नहीं तुम्हारा इस कोटि कोटि जन्म में कल्याण नहीं होने वाला, खाने पीने में मत हम पर एक ड्रिंक क्या नहीं। इसलिए वो महात्मा आकर के, कौन महात्मा, वो लोग बैकुंठ से आए हैं और वो हमारे हित के लिए करते हैं। इस तरह से संत लोग हर घर में जाते हैं और कहते हैं कि भगवान का भजन, कृष्ण की कथाएं सुनाते हैं, कहते हैं कि सखाओं ने जैसे कृष्ण को प्रेम किया, सखियों ने जैसा किया, मैया ने जैसे किया, ब्रजवासियों ने जैसे किया, ऐसे प्रेम करो कृष्ण से जब ही कल्याण करो। आज एक महात्मा आए और उनसे कहने लगे, देखो क्या कर रहे हैं महाजन। महाजन माने क्या, वो व्यक्ति जो भगवान के तरफ में हमें ले जाता है वो महाजन, त्रिपुरा वो क्या कर रहे हैं, सुखों में रहते पचे हुए हैं। स्त्री को लेकर के नाइट क्लब दे जा रहे हैं, वहां क्या कर रहे हैं, नाइट क्लब में जो होगा मदिरा पान कर लिया और उसको बुराई खराई का कोई ज्ञान नहीं रह गया, कुत्ते से भी अधम हो जाते हैं। तो सुना हमारा बहन है कि भाई है कि हमारी मैया है, क्या है, ये ज्ञान नहीं है। स्त्री को भी ऐसा गया नाइट क्लब, घर में बैठे हैं मदिरा पान कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, होश नहीं, इतने अखिल हो गए, मैया को भी बंदूक के लोग का उसका सब कुछ लूट लिया, जरूर से पिताजी को भी मार दिया, संपत्ति हटे ये दूसरे भाई को दे देगा, हमें नहीं देगा। इस तरह से जो पाप नहीं है वो सब पाप कर रहे हैं, करके उनका हृदय गरीब हो, वहां जो भगवान का भजन करने वाला भगवान का सेवा पर उसमें पकड़ में पड़ा हुआ, इसलिए जाकर के बयान तो करते कह भाई मैं तुम्हें एक बात करता था, यदि सुनेगा मेरी बात तुम्हारा चित्त उल्लसित हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। एक आशा की किरण की स्थिति, सुख की आशा की किरण, आनंद की किरण एक झलक होते जिसको तुम पकड़ करके भव सागर को पार करके एकदम सुख। वो क्या कह रहे
हैं,
बोले अरे देखो ये बड़ा पापी था, दिन रात पापी नहीं लगा, तुम्हारे सामने जैसे पापी पापियों को उद्धार करने के लिए कृष्ण ही ने संकल्प किया है और वही ये चैतन्य महापुरुष के रूप में और उनके बड़े भैया बलदेव जी आए हैं नित्यानंद जी। इस विश्व का सृजन करने वाले विष्णु और वेदाचार्य जी राधिका जी प्रिया जी आई हैं गदाधर के रूप में, नारद इत्यादि भक्त लोग आए हैं शिवास आदि के रूप में, वहां प्रेम से बड़ा कीर्तन कर रहे हैं और तुम्हारे जैसे पापी पापियों को उद्धार किया। हाँ, हमारे स्थान पापियों को उद्धार किया। अच्छा, एक बतलाव तो किसको किया? अरे जगाई मधाई ब्राह्मण कुल में जन्म, उसका नाम था
जगदानंद
बंधोपाध्याय,
मधवानंद
बंधोपाध्याय ने उपाध्याय वेदों का ज्ञाता को उपाध्याय और बंदनीय इस कुल में पैदा हुआ ब्राह्मण कुल में, उसके पति में ऐसे ही सब लोग थे किसान भगवान का ग्रहण करने और वो बिना दारू का रहता नहीं, लोग उसके डर के मारे थरथर कांपते हैं। गंगा नदी के किनारे घाट पर जहां पर की नगरिया घाट है, जहां पर की हजारों लोग आते जाते हैं स्नान करने के लिए, उस समय नवद्वीप की आबादी करोड़ों की थी, 22 या कितने बाजार थे उसमें अलग अलग बड़े बड़े छोटे छोटे बाजारों की तो कोई बात नहीं, और उसमें लाखों पढ़ाने वाले अध्यापक करोड़ों की संख्या में छात्र और उनके घरों में या परिवार में कितने करोड़ों लोग वहां पर होंगे। ये जब घाट पर बैठ जाता लोग सवेरे से आने का, डर के मारे कोई नहीं आता स्नान करने, दूसरे घाटों में चले जाते। इसलिए वो मटकी रखी गई है मदिरा से पी करके मक्त है लोग, आंखें लाल लाल हैं, ऐसा कोई जघन्य पाप नहीं जो नहीं करते, मर्डर करना, दूसरों का लूट लेना, कोई लज्जा नहीं, सब कुछ करना। नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु जी ने और भ्रष्टाचार छात्र को भेजा, देखो जाकर के दीक्षा मांग लाओ। क्या दीक्षा होगी? कहना कृष्ण कृष्ण कहो, कृष्ण कृष्ण बोलो, बोलो कृष्ण, भज कृष्ण,
पर कृष्ण की
पर कृष्ण, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ मत मांगना, कोई देवी तो मत लेना, बस अंकल्प तार करके मांगना, जो एक बार तो कृष्ण कह दे। माताओं से कहें माताएं हमको भिक्षा दीजिए, भिक्षा देने के लिए आएंगे, कहना जैसे मैया हमारी झोली में एक बार तो कृष्ण नाम कह दे, वही दे और कुछ नहीं करो, करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण की शिक्षा करो, कृष्ण की कथा सुनो और हमसे सदैव करके कृष्ण नाम दो साफ, बस यही। ये दोनों गए नगर में भिक्षा मांग रहे हैं, कोई हंसी उड़ा रहे हैं, कोई खिल्ली उड़ा रहे हैं, कोई बड़ा आदर कर रहे हैं, तो उनकी चरणों की धूली देते हैं, सब तरह के व्यक्ति तो भिक्षा देने के लिए कोई आता और कहते कृष्ण नाम लेंगे तो हंसते, ये कोई भिक्षा है? ये पागल दोनों है। महिलाओं से कहते महिलाएं माता चावल इत्यादि सब लेते हैं, वो नहीं लेते, ये एक बात तुम कृष्ण कह दो तो अच्छी थी या अच्छे थे वो लोग कृष्ण, बस प्रसन्न होकर के दूसरे दरवाजे पर फिर वही पेट लगा भिक्षा दो और उनसे कहा एक दिन भर का काम मात्र है, जो जाकर के शाम को रुक देना, कितना भिक्षा हुई हमको बतलाना, किसने आदर किया किसने अनादर किया किसने कहा या नहीं कहा, शाम को ये दोनों पहुंच करके उसे बतलाते। वहां पर मुझे बड़े प्रसन्न हो, इस तरह से उन्होंने प्रचार करना। एक दिन ये दोनों पहुंचे घाट पर, देखा जो मत वाले होकर के शराब पी रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो उनको गाली करा, दोनों भाई हैं और दोनों दोस्तों को गाली करे मार रहे हैं, पटक रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं और सब कोई वहां पर करके मारे नहीं जाता, दूसरों को देखते हैं अगर दौड़ते हैं मारने के लिए। नित्यानंद प्रभु ने कहा आज अच्छा पात्र मिला, योग्य पात्र, आज हम परीक्षा करेंगे, आए हैं बड़े बनते हैं हरिनाम कराने के लिए जगत में, आज यदि इन्होंने हरिनाम कर लिया तो समझ गया जैसे हाँ ये ठीक है भगवान क्या होता है, न तमें समझे थे भगवान क्या होता है, देखा थी वो बातें, अगर साथ में क्या ये जाता है वहां मत जाओ उसके पास, मारेंगे तुम्हें, आज मैं परीक्षा करके देख रहा हूं, अब इनसे पतित अधम जगत में कोई नहीं है, यदि इनका सुधार हो गया, उन्होंने हरिनाम कहा और पापों को छोड़ दिया तो मैं समझ लिया कि हाँ हरिनाम का कुछ फल है, अन्यथा नहीं समझूंगा। जब कुछ दूर आगे बढ़कर फिर नित्यानंद प्रभु आइए, अरे देखो कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण कृष्ण बोलो, कहीं आंखें लाल हो गई हैं, कौन दौड़ा वो मटकी लेकर के जो खाली थी और ये भगे दोनों, नित्यानंद पुरुष छह रहे बदन के थे वो तो भगे, और ये हरिदास ठाकुर जी कुछ स्थूल शरीर के इन्हें भागने में हाथ मिले और ये दोनों दौड़ करके आ रहे हैं, अब पकड़ा अब पकड़ा, किंतु भगवान की ऐसी माया जी, अब जहां निकट आए कोई गली आ जाती उधर में चले जाते, इतने में इधर चले जाते उधर चले जाते पकड़ लिए, जब पकड़ने को एकदम ऐसे हुआ इतने में नित्यानंद प्रभु और दो झट एक गली में घुस गए, नहीं पकड़ पाए, इधर उधर देख करके वो लौट, अद्वैत आचार्य जी वहीं पर खड़े थे, क्यों वहां पर क्या बात हो गई, आज वाणी क्यों नहीं निकल गई, हरिदास ठाकुर जी ने कहा ये पियक्कड़ एक दूसरे पियक्कड़ के पास में गया कहा जी हरि बोल, और उसको मारने के लिए दौड़ा, बड़ी मुश्किल से प्राण बचा सके, आज तो मर ही थे हैं? वो नित्यानंद पियक्कड़ और उसका एक और पियक्कड़ भैया है, ये दोनों पियक्कड़ मैं कहता हूं प्रतिज्ञा करके कल ये सभी पान करके दोनों और ये दोनों चारों नाचेंगे और ये सारे नवदीप को देख लेना, हमारी बात यदि झूठो मैं अपनी जबान काट दूंगा यदि मैं झूठा हुआ, ये सब किया कर तुम खबरदार मत जाना वहां, तो हरदास जी उनको वंचना मत कीजिए, नित्यानंद प्रभु की जब इच्छा हो गई इसका कल्याण तो हो गया, मैं समझता हूं यहां तक तो बात रही, महाप्रभु जी को पता लगा, महाप्रभु जी आज शाम दूसरे दिन फिर नित्यानंद प्रभु जी और अद्वैत उनको साथ लेकर के वही कर पहुंचे जहां पर पुनः वहां पर पी रहे थे, झाल रहे थे पी रहे थे, आज और एक कदम कभी आज मत जाना प्रभु वहां, आज तो सीधा चलिए दूसरी गली में, वो माने नहीं उसी घाट पर गए, जाकर के फिर बोले एक बात तो कृष्ण कहो कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 एक कृष्ण नाम करे सब पावना, एक यदि कोई कृष्ण नाम करेगा उसके सारे पाप, ये झूठ नहीं है, सब हम तो बहुत सारे नाम करते हैं, आप लोग सोचते हैं हमारे पाप नष्ट क्यों नहीं हो जाते, अरे तुम्हारे पाप नष्ट हो गए तुम समझ नहीं पा रहे, एक सांप का विषैला दांत किसी ने निकाल दिया और वो जब ऐसे करता है तो उसका भी चढ़ता है, ऐसे उसके जो किए हुए पाप हैं अब वो नाम करने के बाद में अब उसमें बीस नहीं, अब इसको ये समझो एक साइकिल चला रहे टू फोर्स में उसका पैदल चलाया और फिर उसको छोड़ दिया, गाड़ी कितनी दूर तक जाएगी जितनी तक तो उसका फोर्स है, चलाना तो बंद हो गया किंतु चल रही है, इसलिए पाप जैसे दिखते हैं किंतु वो पाप नहीं, इसको समझो एक कृष्ण नाम किंतु कैसा नाम होना चाहिए, नाम स्वयं स्फूर्ति होनी चाहिए, हम अपने प्रयत्न से करते हैं तब तक नहीं, तत्ते पुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्म बोध, भगवान का नाम गुरु की कृपा से अपने आप हमारे हृदय में इसको के नित्य करने लगे, उस समय एक नाम भी सारे पापों को दूर कर देगा और कृष्ण का प्रेम हृदय में आएगा, उस समय में अष्ट सात्विक विकार इत्यादि वह होने लगेगा, पाप तो उनके नष्ट हो गए हैं, एक बार जो कल सुनाया था उसी से, किंतु अब जो क्रियाएं हैं या क्रियाएं कैसे हो रही है, अब मरना पीटना और दारू पीना पहले के संस्कार से हो रहा है, अब उसमें बीस नहीं, अब जो कुछ बाकी है वो आज होने वाला है, बस पहुंच करके जंग कहा जा कृष्ण कृष्ण कहो और खड़िया उठाई और लग गया यहां लग गया रक्त निकलने लगा, हरिदास ठाकुर दौड़ करके महाप्रभु जी के सभा में बसता है, आज तो गजब हो गया, आज तो नित्यानंद प्रभु जी को यहां पर चोट लग गई और रक्त गिर रहा है। अच्छा, अपने सारे परिकरों को और करे क्रोधित होकर के देखा जी इस दारू के एक जगाई को मधाई पकड़ा है कि मधाई को जगाई पकड़ा है, वो मारने के लिए और मारने जा रहा है। कहते नहीं नहीं साधु संत है इसको मत मारो, एक कह रहा है जगाई कह रहा है शायद मधाई को मत मारो और कहते छोड़ दो हमें। और इसलिए नित्यानंद प्रभु चक्र चक्र यम चक्र एकदम हाथ में चक्र है और छोड़ने वाले हैं शिष्यपाल जाता बंद करने के लिए। इतने नित्यानंद झपट करके महाप्रभु जी के हाथ को पकड़ प्रभु इस जन्म में नहीं, इतना तो प्रेम देना है, व्यक्ति को नहीं मारना, व्यक्ति के चरित्र को सुधार करके उसकी भावना को प्रेम देना है, जैसे इसी जन्म में समझ सके कि हमको ये प्रेम, इसलिए मारना है। कंस को मारा, रावण को मारा, मर गए कितनी पीछे से, और इस जन्म में उनके चरित्र को सुधारना है, उनकी बुराइयों को सुधार उनका मारो। बस महाप्रभु जी ने देखा जगाई करा मधाई को, बधाई मारो मत, अरे ये हमारे भक्तों को मारने के लिए निषेध कर रहा है, पर जाकर तुमको कृष्ण प्रेम हो, बस प्रेम में नाचने लगे, बस इतना ही कहा। अब जगाई कौन सा हुआ मधाई को, मैंने से ये एक ही साथ में दोनों हम लोगों ने पाप किया और आपको इसने अपने प्रेम दर्ज दे दिया और हमें नहीं, अरे तुमने नित्यानंद जी के चरणों में पाप किया, अपराध किया, इसे क्षमा मांग। नित्यानंद कह रहे मैंने पहले ही क्षमा कर दिया, क्षमा करने की कोई बात नहीं, हमने पहले क्षमा कर दिया, आप इसको भी प्रेम दीजिए, बस उसको स्पष्ट करते ही बात। दोनों प्रेम में नाचने लग गए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे और क्या करने लगे, उस घाट को धोते प्रतिदिन, घाट में वो सीढ़ियां बनाते, आप प्रतिदिन जाता उनकी चरण कितनी भी लगते, सबकी वंदना करते और भजन भगवान का हरिनाम करने लगे। इस प्रकार से उनको उद्धार कर एक वेश्या थी किसी राजा ने और उनको हरिदास ठाकुर को पतित करने के लिए भेजा, जो मुसलमान का लोग इतना आदर करते हैं हमको आदर नहीं करते, अपने परिक्रम को गेट द्वारा दिया। उसके तीन दिन के तीन रात के नाम सुनने से वो परम पवित्र होकर के और उनको तुलसी का ये दे दिया स्थान, ये इसकी पूजा करना, मैं दूसरी जगह जा रहा हूं, यही बैठ सकते बड़े बड़े साधु लोग भी उसका दर्शन करते, लाखों लोगों का उन्होंने उद्धार कर दिया स्नान के द्वारा। विशेष करके कलयुग में हरे नाम वही को केवलम कल नाचते वो नाचते वो नाचते वह तुम भी जाओ और उनके चरण में नित्यानंद और गौरचंद्र के चरणों में शरणागत हो, उनका नाम करो, तुम्हारा कल्याण है। ये कहने के साथ ही साथ उनको बदला चलो वेद में ऐसा कहा गया है ये कृष्ण ही लुटकी नंदन गौरंग के रूप में है और बलदेव प्रभु जी आएंगे कलयुग के प्रारंभ में, ये आएंगे नित्यानंद
और जगत भर में कृष्ण प्रेम का वितरण करेंगे, कृष्ण राधा जी का भाव अवलंबन करेंगे और राधिका जी के भाव के अनुसार में अपनी माधुरियों का आस्वादन करेंगे। और जगत में कृष्ण प्रेम कैसे पाया जाता है, वह राधांगा भक्ति का प्रचार करें, इसलिए आए जो और किसी जन्म में नहीं दिया है। और जब जन्म में उन्होंने मुक्ति दी, किसी को अच्छा संसार की स्त्री दे दी, किसी को पति दिया, किसी को धन दिया, किसी को संपत्ति दिया, इतना ही कुछ दिया और अधिक नहीं दिया, मुक्ति अधिक से अधिक दिया। रामचंद्र जी को उठने आए तो अयोध्या तक की गति दे दी और कुछ नहीं दिया। और कृष्ण रूप में रसास्वादन किया सबका, दिया कितना, बहुत कम लोगों को दिया, और वही प्रेम आज देने के लिए पापी पापी हमारे जैसे लोगों को भी देने के लिए अवसर हुए हैं। ये वेद में दिखा, क्या कैसे वेद में दिखा, कर्तारम रूप वर्णन जदा पश्य वर्णन कर्तारम क्रम सूक्ष्म ब्रह्म योनिम सदा विद्वान पाप पुण्य विभिन्न निरंजन परम वेद। ये कृष्ण ही गौर वर्ण धारण करके महापुरुष के रूप में आएंगे सचिद। और क्या लिखा, अरे बहुत जगह बहुत स्तुतियों में उपनिषदों ने संहिताओं में इसका वर्णन किया, ये ब्राह्मण के रूप में कलिकाल में ये आएंगे। इसी तरह से वेद में लिखा, यहां तक भागवत में लिखा, छंग ना पलऊ
जब सतम
प्रयाग महाराज जी ने उसको बताया, उसके उपाख्यान ये कलिकाल में भक्त रूप धारण करके आएंगे, ये ब्राह्मण के रूप में आएंगे, यज्ञ कवि धारण करेंगे और कीर्तन धर्म का प्रचार करेंगे। कीर्तन के रूप में ही भगवान की जो उपासना होती है कलयुग में सबसे श्रेष्ठ है। आजकल बहुत से लोग यज्ञ करा भकोसला केवल, कोई भी इसमें चीज नहीं, कोई ध्यान कराते हैं, किसका ध्यान करेंगे, भगवान का ध्यान क्या करेंगे, कलयुग लाख प्रकार की चिंताएं कृष्ण चंचल उसमें क्या ध्यान करें। एक आदमी मान लिया कि जो खुद ध्यान कर रहा है और हमने खड़ा कर ताली बजा दी हरे कृष्ण कर दिया तो क्या होगा उसका ध्यान खुल जाएगा। एक बच्चा उनसे चिल्ला रहा है उसका ध्यान भंग हो जाए, और कोई याद कर रहा है और हम कर रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण अभी देखे कि कृष्ण कहाँ है, मेरे श्याम किधर है, देखो तो
Thank you.
वृंदावन की गलियों में क्या क्या रट रहा है क्या वो राधा राधा
कभी राधा तू कभी
वही हरे कृष्ण नाम महाविप्रम भाव से कर्म स्वर से उनको रोते रोते सुखाओ जो भूत नहीं है कैसे
हरे कृष्ण हरे कृष्ण
करो और साथ साथ में हमारा स्मरण करो
यह कर्म तुम्हें बांधेगा, क्योंकि हमारा स्मरण पर जो कर्म करेगा फल की इच्छा नहीं करेगा और भगवान का स्मरण नहीं करेगा तो उसको कर्म पर। इसलिए अर्जुन को क्षत्रिय अभिमान, इसलिए उनको कार्य युद्ध करो। किंतु उद्धव जी के लिए क्या क्या, वो भी तो क्षत्रिय थे, उनको लड़ने के लिए कहा, उनको अपना परम पूज्य ज्ञान दे करके भागवत ने वर्णन गोपियों का कौन सा क्या करने के लिए कहा, जिसके पश्चिम ऐसा प्रेम करने के लिए कहा जगत के जीव को शिक्षा देने। यदि प्रेम करना है तो गोपियां जैसा हमको, मैं उसके ज्यादा ज्योति साथ प्रसन्न होकर के उस जीव को अपने कर। तो महाराज दुर्योधन ने भी कर्म किया, रावण बड़ा कर्म था, सोने की लंका बना दी और लोग क्या बनाए, उसको विमान कुबेर से छीन लिया, मन की गति से चलता ऐसा कर्म। और हिरण्यकश्यपु ने ऐसा कर्म किया, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, आकाश में न मरूं, पाताल में नहीं मरूं, जल में मरूं नहीं, थल में नहीं मरूं, हवा में नहीं मरूं, आयु में नहीं, द्वारा श्रेष्ठ प्राणी में नहीं, ऊंचा नहीं, आग में भी नहीं मरूं, घर में नहीं, घर के बाहर नहीं, किसी महीने में नहीं मरूं, ऐसा कर्म। ये तो कर्म का प्रभाव था, किंतु कितने दिन, एक सेकंड में। इसलिए कर्म पर आश्रय नहीं कर करके भगवत भक्ति पर आश्रय। देखने में कर्म और भक्ति एक ही समान है, एक पुष्प कृष्ण के चरणों में देना और एक पुष्प अपने सुनना, दोनों एक ही समान कर्म है, किंतु पहला वाला कर्म है, दूसरा वाला कर्म नहीं। कर्म कहते हैं किसको, इस पर विचार कर, कर्म किसको करते, जो कुछ करते हैं वो काम है, ये बात गलत है। जब क्रियते तब कर्म, हम जो कुछ करते हैं, कुछ लोगों का ये विचार, हम जो कुछ करते हैं श्वास में देखते हैं ये कर्म, खाते पीते हैं और सब जो ध्यान करते हैं, ऐसी बात है। कर्म किसको करते हैं जानता हूं, जैसे मैं जा रहा हूं, ये कर्म हुआ कि नहीं,
दूसरा किसी कंपनी
जाना क्रिया है, कर्म नहीं है। मैं खा रहा हूं, आम खा रहा हूं, तब कर्म होगा। मैं सो रहा हूं, क्रिया हो रही है, कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, आई गो, इसमें कर्म का ऑब्जेक्ट कहां है, ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए कर्म नहीं। जब अपने लिए कोई चीज खाया जाएगा उसका फल अपने भोग करते हैं तो इसको कर्म कहते हैं, और वही जो क्रिया करते हैं किसी के लिए नहीं करते हैं तो इसको कहते हैं ज्ञान, और जब कुछ भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं इसको कहते हैं भक्ति। करना सब में है, क्रिया सब में है, ऑब्जेक्ट के अनुसार उसका सब बदल जाता है। एक आदमी करता है किंतु कोई ऑब्जेक्ट नहीं,
अपने लिए करता है ज्ञान,
अपने लिए करता है तो वो कर्म है, जब किसी के लिए नहीं करता, जैसे ये फल छोड़ करके करता है, उसका नाम है ज्ञान, इससे अधिक से अधिक मुक्ति हो जाए। और जब भगवान के लिए अतीत हो रहे इसी का नाम है, तीनों में क्रिया, किंतु एक में ऑब्जेक्ट नहीं है, दूसरे में ऑब्जेक्ट है। पहले तो जैसा कौन सा कर्म होगा, रावण जैसा कर्म, तीन लोगों को कपा दिया, रुला दिया, इसने नाम हो गया राम, सोने की लंका बना दी, अपने सुख भोग के लिए सीता जी को भी हरण किया और किसका किसका अपहरण किया, ये सब कर्म। और कहां जहां जहां तक लोग से सबको हराया, विश्व में घूम कर कहीं हारा भी, ये सब कर्म। किंतु कर्म क्या हुआ, 1,00,000 पुत्र, 1,50,000 नाती, कोई दिया बाती देने के लिए भी नहीं, ये कर्म अच्छा फल। कर्म से, शुद्ध कर्मों से, निष्काम कर्म करने से चित्त शुद्ध नहीं होगा, किंतु शुद्ध होने से जो भक्ति करेगा भगवान को पालेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए भागवत ने कहा निष्काम अस्तित्व भाव वर्जित, सशोभते ज्ञानम अलम निरंजन। ये कर्म की तो बात ही क्या, ये तो सब